ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। भाद्रपद पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक कौन सा पक्ष होता है? पितृपक्ष। ठीक है, तो बाकी सब जगह श्राद्ध चलते रहते हैं, ब्रज में भी श्राद्ध चलते रहते हैं, लेकिन ब्रज में इस समय बहुत सुंदर उत्सव होता है। किसी को पता है कौन सा उत्सव होता है? सांझी उत्सव। सांझी यानी गोबर और बाकी सारी चीज़ें, गोबर मेनली, उस पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं। कभी दीवार पे बनाते हैं, कभी ज़मीन पे बनाते हैं, और प्रतिपदा यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तक फूलों की सांझी बनती है, और एकादशी से अमावस्या तक रंग की सांझी बनती है। तो मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर गया था, तो वो दिन एकादशी थी, तो एकादशी की सांझी इतनी सुंदर बनाई थी, इतनी सुंदर बनाई थी कि आपको लगेगा नहीं कि रंगोली है करके, आपको लगेगा कि ऑयल पेंट से पेंट किया हुआ है। इतना सुंदर कला का प्रदर्शन था वो, कि मैं सोचा मैं आज ही क्यों आया। वो कहते कल तक तो फूलों का सांझी हुआ करती थी। ह्यूज आपका कमरा है ना, इतना बड़ा रंगोली का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर, अष्टकोणी, उसके अंदर कितने सुंदर रंग भरे हैं, मैं पूरा फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको मैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसको 2 बजे से लोग चालू करते बनाना दोपहर को, और शाम को 6 बजे तक बनाते हैं उसको, इतना विशाल रहता है वो। हमारे भी महाराष्ट्र में हमारे पास बहुत फेमस है रंगोली, लेकिन ये जो आपका तकिया का साइज़ है ना, थोड़ा इससे बड़ा होता है वो, यहाँ ये जो है ना, ये एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो है ना यहाँ का, उतना बड़ा होता है मैक्सिमम। और कुछ लोग और बड़े उत्सव में फिर कभी कभी कई मीटर लंबे और कई मीटर चौड़े रंगोली बनाते हैं, ह्यूज, लेकिन वो आम तौर पे उतने ही साइज़ का होता है। दरवाजे के बाहर 2x2 फीट का जो जगह होता है उसमें वो रंगोली बनाते हैं। बट दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये सांझी उत्सव जो है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है वृंदावन में। तो राधा रानी, वो सांझी देवी को पूजने का उनको उपदेश किया गया था कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए आप सांझी बनाइए और सांझी देवी का पूजन कीजिए, फिर आपके इष्ट की प्राप्ति होगी। तो बड़े धूमधाम से कार्तिक महीने के पहले ही सांझी का उत्सव मनाया जाता है। सभी जो युवतियां होती है वो सभी युवतियां फूल रंग बिना के सांझी उत्सव मनाती हैं। सांझी, सांझी नाम ही सांझी है, संध्या का कुछ कारण नहीं, लेकिन सब कुछ शाम को ही होता है, मतलब जो भी है इसका वो भी उसका मीनिंग हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन सांझी का पूजन शाम को ही होता है। वो दुर्गा देवी का स्वरूप है, भगवान की लीला में सांझी देवी के रूप में वो सहभाग देती है। तो सभी सभी दिन भर बनाते हैं उसको। ऐसा है कि सुबह के समय जाते हैं फूल बीनने के लिए, दोपहर में आते हैं फिर उसको बनाना शुरू करते हैं, शाम तक बन जाता है, और शाम के बाद उसका पूजन होता है। फिर शाम का पूजन हो गया तो रात तक उसको दर्शन के लिए रखते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर अगली बार नया बनाते हैं, अगले दिन नया बना देते हैं। तो वैसे ही राधा रानी और सखियाँ मिलकर भी सांझी के पूजन करते थे इसी समय पे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो आसपास के वन थे, वो सब फूल अचानक समाप्त हो गए सुबह ही, पता नहीं बहुत जल्दी कोई निकाल कर ले गया, तो आसपास के वनों में फूल ही नहीं थे कोई। तो उन्होंने तय किया कि दूर जाते हैं आज फूल बीनने के लिए। तो आप जानते हैं सब गोवर्धन के बीच में कुसुम वन है, विशेष रूप से फूलों के लिए प्रसिद्ध है वो। अभी तो उसमें फूल दिखते ही नहीं किधर, लेकिन वो फूलों का वन हुआ करता था। तो वहाँ पर चलने का प्लान हुआ राधा रानी का, ललिता विशाखा आदि गोपियों का। और कहीं से भी ये प्लान जब बना, वो बनने के पहले से ही ग्वाल बालों को पता चला कि आज सब सखियाँ वहाँ जाने वाली हैं। तो उन्होंने सोचा, तुरंत जाके कृष्ण को इन्फॉर्म किया कि आज सब सखियाँ वहाँ जाने वाले हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे, उनको रोकेंगे और टैक्स लेंगे उनसे। तो भगवान के मन में कुछ अलग विचार था। भगवान ने कहा कि मैं थोड़ा बीमार हूँ आज, तो तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाओ और आनंद लेके आ जाओ। उनको मन में पता था कि जब मैं साथ में नहीं रहता हूँ तो ये लोग दूर नहीं जाते हैं, पास पास में गाय चरा के आते हैं, तो उनको पता था पूरा। लेकिन फिर बोलते आप जाओ जाओ आप जाओ, उनको निश्चित रूप से पता था कि मैं जब नहीं जाऊँगा तो ये पास पे से ही गाय चरा के वापस आ जाएंगे। तो फिर वो ग्वाल बाल चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो निश्चित रूप से पास के आना वने में चले जाते हैं गाय को लेके, बछड़े को लेके। उनको पता है कि राधा रानी वगैरह दूर चले जा रहे हैं कुसुम वन में, लेकिन वहाँ तक वो जाते नहीं, कृष्ण नहीं आ रहे तो कैसे जाएंगे। तो कृष्ण भगवान जब देखते हैं कि ग्वाल बाल चले गए आसपास के वनों में, फिर वो खुद निकलते हैं। ठीक है, अभी ये एक सीन हो गया हमारी कथा का कि कृष्ण भगवान अभी निकल गए हैं, उनको साथ नहीं गए हैं, उनको बहका के अकेले चले गए। कुसुम वन में क्या सीन है, कुसुम वन में सब लोग एकाग्र होकर फूल बीन रहे हैं, ये बहुत समझने वाली बात है कि वहां पर जैसे समझो सफेद रंग का फूल चुनना है समझो, और लाल रंग का फूल चुनना है और पीले रंग का फूल चुनना है, आज तीन फूलों की जरूरत है। तो वो तीन प्रकार के फूल तीन ग्रुप में बांटे जाएंगे कि आपको केवल सफेद रंग का फूल चुनना है, आपको पीले रंग का चुनना है, आपको लाल रंग का चुनना है। तो उन लोगों को और विश्व में कोई कलर दिखता ही नहीं है उसके अलावा, केवल वही रंग दिखेगा उनको, उसी रंग के फूल दिखाई पड़ेंगे, और उससे बढ़िया भी अगर पीले रंग के फूल होंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे उनको, इतना उनका एकाग्रता होती है। जो उनको दिया गया है वही दिखेगा उनको, जैसे अर्जुन को केवल बाएं आंख के पुतली को देख रहा था वो, और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये गोपियों के जीवन का, क्यों गोपियों को इतना भगवान मानते हैं या चैतन्य महाप्रभु गौरव करते हैं, क्यों, कारण क्या है उसका, उनका जो समर्पण और जो एकाग्रता जो है ना कृष्ण की सेवा में उनके आनंद के लिए, और किसी के उदाहरण में नहीं है इतना, इतनी एकाग्रता और उसमें साथ में नम्रता भी। ऐसे नहीं कि आप ये पीले फूल लेके आए तो आप डिज़ाइन करेंगे अभी कैसे माला बनाना है, नहीं, आपको पूला फूल फूले पीले फूल लाने का काम दिया है, बस आप उतना ही करेंगे, उसके आगे दिमाग भी लड़ाएंगे नहीं कि मैंने लाए हैं तो इसको ऐसे बना दो वैसे बना दो, ना लाल वाली कहेगी, ना पीले वाली कहेगी, ना सफ़ेद वाली कहेगी, कोई नहीं कहेगा, जिसने बताया उसको ला के देंगे। फिर उसके आगे जाकर जिसने ये योजना बनाई है वो किसी और लोगों को बताएंगे कि आपको ये माला बनानी है, तो फिर केवल माला बनाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैंने माला बनाई है तो मैं आके राधा कृष्ण को खुद पहनाऊंगी। माला बनाने को कहा है, माला बना के देना है, आगे कौन किसको किसके लिए पहनाएगा वो आगे वो जानेंगे क्या करना है। फिर उसके बाद में आगे आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझो ललिता के मन में ऐसे विचार हैं आज कि भगवान को एक मिक्स फूलों की माला पहनाएंगे, फिर एक केवल येलो रंग की माला पहनाएंगे, फिर उसके बाद में लाल रंग के पहनाएंगे और बीच में मिक्स वाले पहनाएंगे, शुरू में येलो वाली, फिर मिक्स वाली, फिर लाल और फिर येलो, ऐसा अगर प्लान होगा तो किसी को केवल लाल फूलों की माला बनाने को बोलेंगे ना, और किसी को केवल पीले वाली बुनेंगे, और किसी को मिक्स सीक्वेंस में बनाने के बोलेंगे, तो वो सारी मालाएं जो हैं वो सुपुर्द कर देंगे। फिर ललिता देवी तय करेगी कि आप जाके पहना दो उसको, जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे पहना दो। यहाँ तक उसका वो होता है क्या, विस्तार रूप में योजना होती है, लेकिन किसी के बीच में ये नहीं होता है कि मैं पहनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं योजना बनाऊंगी, मेरे मन में ऐसा विचार है, इसका डिज़ाइन ऐसे क्यों नहीं करें, वैसे क्यों नहीं करें, ये अच्छा इसके बदले में ऐसे क्यों ना करें, ऐसे कुछ नहीं, जो बताया जाता है वो करते हैं। उसके आगे एक प्रश्न है, उसके पीछे भी एक प्रश्न नहीं होता है, बस क्योंकि वो जो बताते हैं उसके अंदर भी उनका चिंतन इतने गहराई में होता है कि उनके पास विचार किधर, टाइम टाइम का है उनके पास और कुछ सोचने के लिए। हमको अब आपको बोलेंगे आप बहुत एक्सपर्ट कुक हैं, और आपके बोलेंगे माता जी आलू उबाल के देना खाली बस, तो आप सोचेंगे अरे मैं इतना आलू के 50 वैरायटी बना सकती हूँ, मुझे आलू खाली उबालने को बोल रहे हैं। तो कम से कम मैं उनको आइडिया तो दूँ कि उबले आलू के क्या क्या बन चीज़ें बन सकती हैं, ऐसा मन में आता है ना विचार तुरंत, 50 साल से खाना बना रही हूँ, मुझे खाली आलू उबाल के तो इतना ही बता रहे बस, व्हाट इज़ दिस, ये मेरे डिग्निटी के बहुत नीचे कितने विचार आएंगे मन में। और आप एक शब्द बोलेंगे, आप बोलेंगे माता जी देखो जो बताया वो आपको करना है और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, तो आप बहुत मुश्किल से मुंह बंद करके बैठे हुए मन में कितने विचार आएंगे, इसके क्या क्या बना सकते हैं, ये कैसे बताऊँ इनको, अभी इनको बोलने का मौका भी दे रहे हैं। लेकिन आलू के वो उबालना उबालना है, इसके अंदर उनका इतना गहरा चिंतन है कि उसके बाद में क्या करना है उसको सोचने के लिए बेचारी टाइम ही नहीं उनके पास। मुझे अभी इस बात पर एक बात याद आ रही है, वो अभिराम गोपाल ठाकुर हमारे गुरु भाई थे, पता है आपको, कितने लोगों को पता है अभिराम गोपाल ठाकुर को, वो पाकिस्तानी थे, वो हिंदू थे लेकिन पाकिस्तान के नेशनल थे। और एक ज़माना था उस समय 8 पाकिस्तान के इस्कॉन के मंदिर जलाए गए, तभी इनको केवल जलाए नहीं गए, इनको पकड़ के भी अरेस्ट करना था उनको, बहुत लोग भाग गए इंडिया में ऐसे फ्ली हो गए, एकदम फिजिकली भाग गए, गाड़ी वाड़ी से नहीं भाग गए, मतलब भाग गए फिजिकली। तो फिर वो वृंदावन आए हमारे पास, मेरे पास गुजरा वृंदावन जब मैं था तभी आश्रम में छुपने के लिए आए थे, कई महीने छुपे रहे, फिर बाद में मामला शांत हो गया, फिर वो उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और उनके बाद में फिर वो गोपीनाथ मंदिर में वानप्रस्थ बन गए सैफरन पहन के। तो तब वो गुरुदेव के लिए भोजन बनाते थे, तो गुरुदेव जब भी भोजन करते थे तो ऐसा नहीं कि केवल अकेले के एक से हाथ से खाते थे, कुछ लोग बहुत सारे लोग बनाते थे, जैसे अपने दो को बना दिया, इन्होंने दो बना दिया, ऐसे उनमें उनके भी कुछ आइटम हुआ करते थे। तो गुरुदेव के पास जब थाली आती थी प्रसाद की उनकी, तो गुरुदेव जी कहते थे कि इस थाली में अभिराम गोपाल ठाकुर ने क्या बनाया है वो मैं आपको बिना बताए बता सकता हूँ देख के केवल, क्योंकि वो कहते थे कि अभिराम गोपाल ठाकुर प्रभु ने बनाया हुआ जो व्यंजन है वो कहते हैं इट यूज टू शाइन आउट ऑफ द अदर आइटम्स, कैसे बोलते हैं इसको हिंदी में, कि वो प्रकाशित हुआ करते थे और वो देख के समझते थे कि ये आइटम उन्होंने बनाए हैं। आप लोगों को बहुत सुनकर अच्छा लगेगा कि आप सब लोग सब्जी काटते हो ना, सब लोग काटते हो, सब लोगों को पता है सब्जी कैसे काटते हैं, लेकिन उनके सब्जी में समझो आलू की सब्जी बना रहे हैं तो सारे आलू एक ही साइज के रहेंगे, बाकी जितने आलू होंगे छोटे मोटे बचते हैं ना वो सब डिस्कार्ड, उसमें से जितने एक ही साइज के हैं वही सब्जी में जाएंगे। और आप काशीफल की सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी वो एक साइज सही करेंगे, वो कारपेंटर कैसा होता है, कारपेंटर उसको भी 2 बाय 1 फुट का समझो लॉग बनाना है तो काटेगा, बहुत सारा वेस्ट पीस निकलेगा वो सब बाजू में करेगा, वो 4 पीस जो चाहिए वही उसको फर्नीचर में इस्तेमाल करेगा, है ना, उसका रिक्वायरमेंट है वो, बाकी सब तो वो वेस्ट हो गया, मतलब वो इस वैसे वो सब्जियां बना देते। और जो भी बनाते थे उसमें पकौड़ा बनाना है तो उनका पकौड़ा भी सारे सेम साइज के हुआ करते थे, सेम कलर के हुआ करते थे, अगर आपको ब्राउन फ्राई करना है तो ब्राउन ही मिलेंगे आपको, कोई येलो कोई लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन ब्लैक ब्राउन कुछ नहीं मिलेगा नहीं। ये हर एक सेवा जो है ना चिंतन का विषय है। तो आलू की सब्जी दुनिया में कितने करोड़ों लोग बनाते होंगे, बट आलू की सब्जी समझो एक ही रेसिपी, ऐसी रेसिपी होगी फिर भी वो 10 लोग बनाएंगे तो 10 तरह की बनेगी कि नहीं, उसका स्वाद देखो, उसका रंग देखो, उसका अपेयरेंस देखो, उसका कंसिस्टेंसी जो भी है, तो इसके कारण वो ना उसका इतना प्रेसाइज थे, वो इतने स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से बनाते थे कि उनकी सब्जियां और आइटम ना ऐसे उठकर दिखते थे उनके थाली में। गुरुदेव ने प्रत्यक्ष मेरे सामने कहा हुआ बात है, मुझे अभी भी याद है, बोलते हिज ऑफरिंग्स आर एफलजेंट, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द ऑफरिंग, टू मेक इट एफल्जेंट. हिंदी में बोल रहे हैं ना आज, इंग्लिश बोल रहे हैं. तो सब्जियों को, हमारे भोग भोग की वस्तुओं को अगर तेजस्वी बनाना है तो क्या आवश्यक है? अच्छे क्वालिटी का आलू आवश्यक है ना? अच्छे क्वालिटी का आलू आवश्यक है ही, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके पीछे जो भाव है, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ज़रूरी है. और सबसे सिंपल आइटम जो है, उसके अंदर भी आप अनंत चिंतन को ढोर भर सकते हो. फिर आलू की सब्जी में क्या है? अरे आप लोग यूपी के लोग आलू जीरा इतना अच्छा बनाते हैं, अलग अलग आलू को पीस रहेगा उसके अंदर, कोई ऐसा चिपका हुआ भी नहीं मिलेगा, नहीं सब अपना अलग अलग रहेगा. तो सब लोग यूपी में बनाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो यूपी में बनाते हो आप, वृंदावन में जाकर खाएंगे तो उसको आपको अलग टेस्ट मिलेगा. किसी पंजाबी के घर में जाएंगे तो अलग टेस्ट मिलेगा. मारवाड़ी के घर में आपको खाएंगे तो उसको अलग टेस्ट मिलेगा. सेम आइटम है वो, तो डिफरेंट क्या है फिर उसके अंदर? आइटम सेम, रेसिपी सेम, दिखने में भी सेम, लेकिन फिर भी डिफरेंट है. वो क्या है? उसका चेतना है, उसकी भाव अलग है उसका. तो वैसे गोपियों गोपियों को जब कुछ काम दिया जाता है तो वो कोई काम ऐसा नहीं होता है, अरे क्या आलू की सब्जी बनाने को बोला, मैं इतना फाइव स्टार सब्जी बना सकती हूँ, वो आलू की सब्जी का क्या है, ये तो मेरे बच्चे भी बना लेते हैं, जो सभी स्कूल जाने लगी है वो भी बना लेती है. लेकिन उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना सिंपल मुझे काम दिया, मैं तो इतना हाई फाई काम कर सकती हूँ. लेकिन वो काम में जो चेतना की आवश्यकता है, वो सागर की तरह है, बहुत विशाल है वो, जो भाव उसके पीछे छुपा हुआ है. तो ऐसे गोपियाँ, अभी केवल येलो फूल चुनना है उसमें क्या है, बच्चा भी चुन सकता है, मुझे क्या चुनना है उसके अंदर जाके. लेकिन वो येलो फूल में सब पंखुड़ियाँ सही जगह पर तो है ना, ज़्यादा तो फूली हुई नहीं है, या बहुत कली के रूप में तो नहीं है, एकदम परफेक्ट साइज़ के. अभी एक मार्केट गार्डन में जाएंगे आप तो कितने तरह के गुलाब मिलेंगे आपको, छोटे मोटे, खिले हुए, नहीं खिले हुए, अध खिले, कितने प्रकार के मिलेंगे. उसमें चुनना क्या है आपको? आपको सेम साइज़ के, सेम पंखुड़ी वाले, सेम तरह खिले हुए ऐसे फूल चुनने हैं. ऐसे तोड़ने के लिए तो कोई भी तोड़ सकता है उसको, तो आपकी विशेषता क्या है उसके अंदर? ऐसा उनका चिंतन रहता है. ये सब मैंने क्यों बताया? ये समझाने के लिए कि जब गोपियाँ कुसुम वन में प्रवेश किए सब लोगों ने, तो वो किस प्रकार से फूल बिन रही है, आप कल्पना कर सकते हैं? अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई किलकिलाट नहीं कर रहे हैं, अरे ये और ऐसे और ऐसे, सब लोग शांति से फूल बिन रहे हैं, एकदम एकाग्र होकर, मग्न होकर, गहराई में, मग्नता में वो फूल बिन रहे हैं. और सब लोग बिखर गए ऐसे, बहुत सारी गोपियाँ फूल बिन रहे हैं. इतने में इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि किसी को पता नहीं कि आजू बाजू में क्या है, कि दुनिया में पीले फूलों के अलावा कोई फूल होते भी हैं, इसका भी विचार नहीं है मन में. और जी जो लोग लाल फूल बिन रहे हैं उनको ये पता नहीं कि दुनिया में पीले फूल भी होते हैं. उस समय के लिए, उस दिन के लिए, उस क्षण के लिए उनके सामने जो बताया गया है वही फूल दुनिया में उपस्थित हैं, और कोई दुनिया में फूल उपस्थित नहीं है. ऐसा होना चाहिए जीवन, है ना, एकाग्र, एकदम फिक्स्ड, फोकस्ड, कंप्लीटली केंद्रित, और कोई मन में विचार नहीं, बस क्या लाभ होगा मुझे, क्या मिलेगा, क्या वरदान मिलेगा उसके बाद में, क्या खुशी मिलेगी, इसका क्या होगा आगे, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, कोई विचार ही नहीं मन में, बस कृष्ण की सेवा में, राधा रानी की सेवा में, ये आज सेवा मिली है वो कितनी और अच्छी तरह से और सुंदरता से और कल्पकता से और भाव से बनाए की जाए, उसी पर चिंतन रहता है. और हमारे विचार एग्जैक्टली उल्टे होते हैं. हम लोग सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई बड़ी सेवा किसी को तो दे तो नहीं गई, या हमारी योग्यता की दी गई हमको, कि हमसे निचले योग्यता की दी गई, या हमसे बड़ी कोई सेवा किसी को, नए भक्त को तो नहीं दी गई, और इसका क्या होगा आगे सब बताओ पहले, कौन क्या करने वाला है, लीडर कौन है उसका, और वो लीडर क्यों है, मैं क्यों नहीं लीडर, मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ये सारे विचारों का जंजाल हमारे मन में रहता है, और सेवा एक जगह रहती है, वो भी करना है प्रेम से, ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ में इतना सारा माहौल रहता है विपरीत विचारों का. इसलिए वो किसी की सब्जियां ऐसी दिख रही है, किसी की तेजस्वी दिख रही है, फर्क वही है उसके अंदर. तो एक और बात बता देता हूँ, मेरे मन में विचार आया उसका, कि वो हमको तो दिखती नहीं सब्जी कोई तेजस्वी, तो गुरु महाराज को कैसे दिखाई पड़ रही है तेजस्वी सब्जी। तो वे एक उस पर एक सुंदर बात ऐसी है कि जैसे हम शुद्धता का जीवन जीने लगते ना, लाइफ ऑफ प्यूरिटी है ना, हम लोग फिर पहले तो शुरुआत मांस नहीं खाते हैं, वो नहीं करते, ये नहीं करते, बेसिक बेसिक छोड़ देते हैं, उसके बाद में फिर और साफ सफाई रखते हैं, मन की रखते हैं, किचन की रखते हैं, कपड़ों की रखते हैं, बहुत सारे नियम पालन करते हैं, और एक और अधिक शुद्धता का जीवन, और अधिक शुद्धता का जीवन, और अधिक प्यूरिटी का जीवन जीने लगते हैं। और जितना अधिक हम शुद्धता के स्तर पर जीने लगते हैं, उतनी हमारी इंद्रियों की जो संवेदनशीलता है ना, वो बहुत गहरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे आया समझो, तो मुझे तुरंत लगेगा कि किचन में कोई एक आलू सड़ा हुआ है, तो यहीं से नाक बताएगा कि यहाँ पर ये आइटम उधर अंदर बिगड़ा हुआ है, या किसी कोने में कुछ गेंदे के फूल सड़े हुए पड़े हुए हैं, या केसर चंदन की अगरबत्ती भगवान के मंदिर में लगाई गई है। ये जितना आपका जीवन और शुद्ध हो जाएगा आचरण में, विचार में, वैसे आपके आज की जो इंद्रियां हैं वो और क्या कहते हैं उसको, संवेदनशील हो जाएगी, बहुत जल्दी पकड़ लेगी जो चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद में क्या होता है कि 10 लोगों में से किसके किसके भाव क्या है मन में, वो भी उनको देख के आप पहचाने जाएंगे। आपको कोई ब्रॉडकास्टिंग करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे झलक लेंगे, ऐसे करेंगे, सबको सब समझ जाएंगे कौन कौन से मूड में है, कौन उखड़ा हुआ मूड में है, कौन शांति मूड में है, कौन चैलेंजिंग मूड में है, कौन श्रद्धालु है, कौन अश्रद्धालु है, कौन किस मूड में है, सब कुछ तुरंत समझ में आएगा आपको। कोई उसका साइंस, कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, जैसे परसेप्शन जो है ना, परसेप्टिबिलिटी। तो एक योगी ने ऐसे कहा था कि शुद्धता के जीवन को जीने के बाद में जो संवेदनशीलता होती है, उसको अनुभव करने के बाद में वो व्यक्ति अशुद्ध जीवन जी ही नहीं सकता है, उसके लिए वो अशुद्धता का जीवन अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो परसेप्टिबिलिटी, जो संवेदनशीलता उसको प्राप्त हो रही है, वो इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है कि वो उसको त्याग नहीं सकता अभी अशुद्ध चीजें करके। तो 50 साल अगर 4 नियमों का पालन कर चुका है और वो एक प्रकार के चेतना का अनुभव कर चुका है, वो अभी एक घिलौना काम करके उसको गंवा नहीं सकता, कितना भी मोह होगा उसको शायद। अचानक याद आ गई, बचपन में वो फिश खाया था, वो आज सामने एकदम उसी स्टाइल में, यूपी की अपना साउथ इंडियन स्टाइल में मिल रहा है आपको, तो 50 साल की तपस्या को वो एक मोह के लिए मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसको 2 मिनट का आनंद मिलेगा वो फिश खा के, नियम तोड़ के, लेकिन 50 साल की जो प्राप्ति है संवेदना की, वो समाप्त हो जाएगी उसकी, तो वो ट्रेड नहीं कर सकता उसको, कितना भी मोह होगा तो उसका। तो गुरुदेव जैसे लोग जो हैं, वो इतना लंबा समय तक का जीवन इतनी परिपूर्ण शुद्धता के आधार पर चला रहे हैं, तो वो उनको पता चलता है किसने क्या भाव से बनाया है। वो कोई चीज़ बहुत ऑपुलेंट भी होगी तो उसको टच नहीं करेंगे, वो सिंपल सी चीज़ है उसको बहुत सारा खाएंगे। वो उनका जो आदान प्रदान होता है ना, वो केवल भाव के आधार पर होता है, वो आइटम नहीं खाते। जैसे कृष्ण भगवान जब भी विदुरानी के घर पे गए थे, तो केला नहीं खा रहे थे, वो ना छिलका खा रहे थे ना केला खा रहे थे, कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं खा रहे थे। वो क्या खा रहे थे, क्या ग्रहण कर रहे थे, वो केवल उसका विदुरानी का भाव ग्रहण कर रहे थे। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। विदुरानी के घर पे वो छिलका दिया जा रहा था, लेकिन वो छिलका भी नहीं ग्रहण कर रहे थे एक्चुअली। और यहाँ बैठी आप जी, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान जैसे हैं, जिस प्रकार की संवेदनशीलता भगवान में है, उसी प्रकार की संवेदनशीलता उनके भक्तों में भी आ जाती है, जब वो उसी प्रकार का शुद्ध जीवन जीवन जीते रहते हैं, तो वही जो भगवान की संवेदनशीलता है, वो भक्तों के अंदर भी प्रवेश करती है, और भक्त लोग भी भगवान जैसे ही संवेदना का अनुभव करते हैं, हर चीज़ का, हर स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कुत्तों में एक ऐसे एक गुण होता है, कुत्ता अगर अंदर आएगा ना, अच्छे जाति का, नॉट हाइब्रिड, अच्छा जाति का कुत्ता आएगा, तो वो इसमें कितने लोग डरे हुए हैं, कितने लोग कमज़ोर हैं, कितने लोग स्ट्रांग है, वो सबको पहचान लेता है, किसको किसकी धड़कन बढ़ रही है मुझे देखकर डर के मारे, या कोई किसको मुझे देखकर फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तुरंत पहचान लेता है। वो इस इज अ सिद्धि बाय बर्थ कुत्ते के अंदर होती है। तो कुत्ता चोर को कैसे पहचानता है, उसके अंदर की धड़कन का जो होता है ना चेंजेस, उस पर ही वो पकड़ लेता है चोर को। चेंज ऑफ फाइव बीट्स ऑल्सो ही कैन मेक आउट। तो वो तो कुत्ते के एक एक चीज की हम बतावात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर शुद्ध भक्त की, शुद्ध चेतना की, संवेदनशीलता की बात करेंगे तो उनको क्या सब कुछ समझ में आता है क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो भगवान का होता है ना, वो क्यों नहीं सिद्धियों के पीछे भागता है, अनेक कारण है उसके। लेकिन एक कारण ये है कि ये जो तपस्या वपस्या त्याग वाग करके हजारों साल तपस्या करने के बाद में जो प्राप्त करते हैं ना सिद्धियां, जो मन पढ़ना, ये देख लेना, आपका भविष्य देख लेना, आपका भूतकाल पढ़ लेना, ऐसे होता है ना, ऐसे आपको देख लिया मैंने तो आपका पूरा भूतकाल मैंने पढ़ लिया कि क्या क्या हो गया इनके जिंदगी में। जैसे वो थे ना चिदानंद स्वामी जी, जिनको जब ही राधानाथ महाराज मिलने गए, मतलब उस समय रिचर्ड थे वो, रिचर्ड क्लाइविन, तो जैसे देखा उनको तो पूरा उनका बचपन से इतिहास बता दिया, कहाँ जन्म हुआ तुम्हारा, कहाँ से हिचहाइकिंग करके कहाँ से कहाँ कहाँ आ गए, सब बता दिया 2 मिनट के अंदर, पूरा डिटेल में बता दिया एग्जैक्टली। बातचीत भी नहीं, पहचान भी कुछ भी नहीं हुआ, नाम के साथ में पूरा इतिहास बता दिया उन्होंने। तो सिद्धि है ना, वो तपस्या के बाद प्राप्त की हुई है। लेकिन वही सारी सिद्धियां शुद्ध भक्त के पीछे हाथ जोड़कर भागती रहती हैं। शुद्ध भक्त भी सब कुछ सबका पढ़ लेता है, लेकिन कभी बताता नहीं किसी को कि मुझे आपका भविष्य भूतकाल समझ गया है, मुझे आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके मन में क्या क्या लड्डू फूट रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो कुछ किसी को बताते नहीं है। क्योंकि जो सिद्धियाँ योगियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो भक्त के लिए उनके पास होने के बाद भी एकदम इनसिग्निफिकेंट होती है वो, है ना। अभी एक स्त्री के लिए अगर सोने का गहना है समझो, तो कितना मूल्यवान होता है। कोई सन्यासी को गहना दिखाओगे सोने का तो वो क्या बोलेगा, येलो स्टूल बोलेगा, वो वही चीज़ है, वो उसके लिए वो तो एकदम तुच्छ चीज़ है, और एक स्त्री के लिए बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। क्यों, वो चीज़ तो वही चीज़ है, तो किसमें अंतर, किसमें है, अंतर चेतना में है। तो वैसे ही शुद्ध भक्तों की चेतना ऐसे कैसे पहचान सकते हो कि ये प्रेम से बनाया है, ये बहुत भाव से बनाया है, और ये ऐसे ही बनाया है किसी ने। वो जो परम शुद्धि की अवस्था है ना आत्मा की, उसके अंदर अपने आप ही सब कुछ समझ में आता है। इसलिए वो बेर तोड़ तोड़ के दे रहे थे और भगवान प्रेम से खाए जा रहे थे उसको। लक्ष्मण जी को परेशानी हो रही थी और राम जी कह रहे थे शांत रहो बाद में बताता हूँ, अभी खाने दो। और भगवान खाते रहे उसको। जो एक भिल्ल जो है शूद्र जाति की स्त्री है, जंगल में रहने वाली, कोई कल्चर नहीं उसको, एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई ट्रेनिंग नहीं, ब्राह्मणिकल कुछ नहीं है, उल्टे उसके मुंह से खाए हुए आधे बेर खाना, मतलब कितनी घिलौनी चीज़ है ना, एक तरह से एक बार से कितनी घिलौनी चीज़ है, एक ब्राह्मण के लिए भी, एक भक्त के लिए भी, एक तो भगवान स्वयं आ रहे हैं और वो बड़े आनंद से खा रहे हैं उसको, क्योंकि वो शबरी के हृदय के अंदर का भाव जो है ना उसको चख रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसको प्रतिसाद दे रहे हैं। इतना सूक्ष्म स्तर पर वो काम करते हैं, कितनी संवेदना सूक्ष्म होगी उनकी, संवेदना सूक्ष्म है इसलिए उसको समझ रहे हैं, तो समझ के उसको आदान प्रदान भी कर रहे हैं, उसी भाव से उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान जा रहे हैं ताल वन की ओर और पक्षी बोल रहे हैं, तो भगवान हर एक पक्षी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ग्वाल वालों को लग रहा है कि वो तो ऐसे आवाज़ निकाल रहे हैं, है ना, ऐसे आवाज़ निकाल रहे हैं अलग 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 अलग, उनको आनंद आ रहा है बड़ा। देखो हमारे कथा कन्हैया जी कैसे मोर का आवाज़ निकालते हैं, कैसे तोते की आवाज़ निकालते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वास्तव में भगवान हर एक तोता, हर एक मोर, हर एक कोयल को उन्होंने जो पुकारा है उनको अपनी आवाज़ में, उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हर एक तृण के पत्ते को भी वो जवाब दे रहे हैं जब पाँव रख रहे हैं उनके ऊपर, इतनी संवेदनशीलता है। पैर से तृण को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुख से पक्षी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दृष्टि से और किसी को दे रहे हैं, हर एक इंद्रिया उनकी, अंगानी अस्य सकल इंद्रिया वृत्ति मानती परिपूर्ण है, हर एक इंद्रिया से सभी जीवों के साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं एक साथ में, वो भी भाव के स्तर पर, बाह्य स्तर उसमें कुछ नहीं है। तो ये बात मुझे बताना था, इसका सारांश क्या है, कि जितना हम शुद्धिपूर्ण जीवन जिएंगे उतना आपकी आत्मा की संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी सूक्ष्म रूप से, और आपको सिद्धि के रूप में उसको प्राप्त करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, अपने आप हो जाएगा। इसीलिए शुद्ध भक्त सिद्धियों के पीछे भागता नहीं है, क्योंकि अपने आप ऐसे बाय द वे बोलते ना, मैं चल रहा हूं तो चार लोग यहां से, दो लोग यहां चल रहे हैं मेरे साथ में चल रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं है, अपने आप ही आ रहे हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं कि वो मेरे साथ चले, वो मुझे इतराज भी नहीं है, वो चल रहे हैं मैं भी चल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आ रहे हैं मेरे साथ, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, और क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे साथ में, पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं, साथ में क्यों नहीं चल रहे, वो भी इतराज नहीं है। इस इनडिफरेंस मतलब क्या है, उदासीनता है उसकी तरफ, सिद्धियां चल रही है आपके साथ में, आतुर हैं, जब आप चाहें तभी आपको सेवा दे सकती हैं। सडनली आपको मन में विचार आया कि चलो कन्हैया प्रिय प्रभु के मन में क्या चल रहा है जरा पढ़ लूँ, तो सिद्धि हाजिर है आपको तुरंत, तुरंत उसका प्रिंटआउट निकाल के देंगे आपको, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। ये स्थिति जो है ना वो सिद्धियों से भी उपस्थिति है, जो सिद्धि सिद्धि और सिद्ध व्यक्ति जो है सिद्ध, वो उन सिद्धियों के लिए जीवन खर्च कर चुका है तपस्या के आधार पर। वो जो इतनी मूल्यवान चीज के लिए पूरा जीवन तपस्या में बिताया उसने, तो वो प्राप्त होने के बाद कितनी वैल्यू होगी उसको, उस चीज की कितना मूल्यवान होगी वो वस्तु, वही वस्तु एक शुद्ध भक्त के लिए तुच्छ हो जाती है, जो एक सिद्धि सिद्धि व्यक्ति के लिए, सिद्ध व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान होती है। यही फक्त है, फर्क है भक्त और योगी सिद्धि और कर्मी और ज्ञानी और त्यागी के बीच में। एनी वेज, हम लोग कहाँ थे, हम लोग अभी कुसुम वन में बैठे हुए हैं। कुसुम वन में ऐसे कोई चर्चा नहीं करता फिलोसॉफिकल। कुसुम वन में सब लोग लगे रहते हैं मन से एकदम बहुत ध्यान पूर्वक, तो सभी गोपियों गोपियाँ जो है वो अपने अपने रंग के फूलों को बिन रही हैं, और सबको ये पता भी नहीं लग रहा है कि उनके सब जो पल्लू वल्लू जो है वो सब कांटों में फंसे हुए हैं अभी, लेकिन वो फूल बिन रहे हैं। अचानक उनको कुछ आवाज आने लगती है, तो बड़ी दूर आई ना वो, तो जल्दी जल्दी फूल बिनकर जल्दी जाना है लेट हो जाएगा, तो सखियां कहते हैं, तो सावध हो जाती है वो अपने चिंतन अपने मग्नता अपने क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज इट कॉल्ड, मैं समाधि कह सकते हैं उसको, निरंतर निरंतर जो चिंतन करते हैं ना किसी विचार पर, निरंतर अखंड, उसको समाधि कहते हैं। तो वो समाधि अवस्था में अपनी सेवा के विषय में पूरे चिंतन में है वो, उसमें कुछ खट कुछ आवाज हो जाता है, तो कुछ लोगों का चिंतन थोड़ा सा भंग हो जाता है, तो देखते हैं दूर से माली आ रहा है, उसके हाथ में डंडा है, जो बड़ा फेटा पहना हुआ है, बड़ी उग्र मूछे हैं उसकी, लाल आंखें हैं, और लग रहा है कि वो क्रोध में है, और क्रोध का कारण तो समझने में देर लगती नहीं ना, चोर को तो लगती नहीं बिल्कुल, तो समझ में आया कि हम लोग इस वन में, किसी का वन है ये, हमने तो जल सिंचन नहीं किया उसका कुछ, रेडीमेड फूलों को बिन रहे हैं, तो वो समझ गए कि भाई हमको पकड़ने के लिए आ रहा है वो, तो वो डंडा जो है ना पटक पटक के आ रहा है, तो उसकी आवाज़ अभी दूर है, तो किसी के कान में पड़ी वो, तो वो सावध हो गए, फिर सब लोग को सावध किया उन्होंने, चलो चलो चलो, पंछी कैसे होता है मालूम है आपको, पंछी तुरंत ची 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 आवाज़ आने लगते हैं, वो एक जंगल में भी एक पंछी होता है, वो ना आका बहुत पेड़ के ऊपर बैठता है और दूर से आते हुए शेर को देखता है, तुरंत नीचे आके ची 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 करता है, सब सावधान हो जाते हैं, सबको पता चलता है कि शेर आ रहा है, सब लोग अपना अपना काम छोड़ के भागने लगते हैं, और वो क्या करते हैं ना, बाद में शेर जहाँ से जा रहा है उसके ऊपर ही ऊपर से ही उड़ता रहता है, और ची 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 करके उसके ऊपर से जाता है, लिटिल अहेड ऑफ द शेर, सबको सावधान कर देता है वो, तो शेर को भी पता चलता है कि इसकी वजह से सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है कि वो आकाश में वो जमीन में, उसी तरह से वो सबको सावधान करते हैं, तो सब गोपियाँ अपना अपना पल्लू छोड़ के जिसका अटका हुआ है निकाल के पकड़ के भागने शुरू करते हैं, और सबको सब पुकारने लगता है, ललिता विशाखा को पुकार रही है, विशाखा धनिष्ठा को पुकार, धनिष्ठा नंदीमुखी को पुकार रही है, ये किसी को पुकार रही है, उसको पुकार रही है, चंद्रा नाना को पुकार रही है, तो सब लोग भाग रहे हैं, समझो आपको पुकारा और आप भाग रहे, तो आपको दोबारा पुकारने की जरूरत नहीं क्योंकि आप निकल गए हैं, अभी आपको पुकारा है, तो राधा रानी अभी निकली नहीं है, तो सब लोग अभी सब निकल गए हैं, भाग रहे हैं, और राधा रानी अकेली फंसी हुई है, क्योंकि उसके जितने भी जगह पर है, पहले तो उसका चिंतन जो है बहुत जल्दी टूटा नहीं, वो टाइम लगा उसको ध्यान में आने के लिए, और जब ध्यान में आया तो उसके लगा कि अरे सारे जगह पर कांटे में मेरा कपड़ा अटका हुआ है, मेरी चुन्नी अटकी हुई है, मेरा घाघरा अटका हुआ है, सब जगह अटका हुआ है। अभी वो यहाँ से निकाल रही तो यहाँ से दोबारा अटक रहा है, यहाँ से छोड़ दिया तो इधर दोबारा अटक रहा है, ऐसे करके करके वो पुकार रहे हैं, भागो भागो वृषभानु नंदिनी भागो। तो वो और चिंतित हो रही है कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, इस झाड़ी में से निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो उसमें उसमें में क्या हो रहा है, जो दूर तक आवाज़ थी, दूर से आ रही थी टक 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 डंडे की आवाज़, अभी वो पास में आ रही है और बड़ी आवाज़ में आ रही है, वही आवाज़ अभी टक टक ठक ठक ठक, ऐसे आपको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति पास में आ रहा है। तो जैसे ही आवाज़ पास में आ रही है, दो चीज़ें हो रही है, ये आवाज़ जो है बड़ी मात्रा में पास में आ रही है, और गोपियों की पुकार की आवाज़ जो है वो धीमे धीमे होती जा रही है। क्यों? अभी वो इधर थे, उधर से पुकार रहे तो बहुत ज़ोरदार थी आवाज़, अभी वो भागते 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 पुकार रहे तो और वो धीमे धीमे होती जा रही है, इनकी पुकार की आवाज़ धीमे धीमे हो रही है, इनके डंडे की आवाज़ बड़ी बड़ी होती जा रही है। मतलब अभी वातावरण एकदम क्लियर है कि मैं अकेली हूँ और मैं पकड़ी जाने वाले हूँ, माली आके मेरे सामने खड़ा होकर मुझे अरेस्ट करूँगा और मैं कुछ नहीं कर सकती अभी। तो उसके सुंदर कपाल प्रदेश पर ना श्वेत बिंदु जमा हो जाते हैं, डर के मारे कांपने लगती है, बहुत सारे फूल गिर जाते हैं उसमें से, बहुत सारी जगह अभी तक कांटों में अटके हुए हैं पल्लू, और माली बहुत लाल आंखें करके बड़ी मूछे वाला बहुत क्रोध से सा के सामने ठाक खड़ा हो जाता है। अभी तो वो मराठी में शब्द है गर्भगणित, पता है उसका मतलब क्या है, मतलब टोटल आप डरे हुए हो, उसको गर्भगणित कहते हैं, एकदम डरी हुई अवस्था में, और वो घूर घूर के उसकी आंखों में देख रहा है और वो डर डर के उसको देख रही है और पसीना आ रहा है, पसीना कहना में गलत है उसको, श्वेत बिंदु, दिव्य श्वेत बिंदु। बहुत देर तक ऐसे वो, आप सोच सकते हैं ना, जो आपको आप चोरी करते हुए अगर आपको सामने पुलिस खड़ा हो गया समझो, और अभी वो कुछ नहीं कर रहा, खाली आपको देख रहा है, उसको आप देख रहे हो, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सब बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आपको भागना भी है, आपको यहाँ से अदृश्य होना है, उसके आंखों से वो देख रहा है, तो आपको तुरंत एक मंत्र बोल के अदृश्य हो जाना है उधर से, लेकिन आप बहुत कुछ करना चाहते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे वो लगता है ना युगातम निमेशेण, ऐसे एक एक युग, एक एक क्षण जो है वो युगों की तरह बीत रहा है, वो जो माली आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हो, लगता है कि इतना एक एक क्षण युग के समान क्यों हो रहा है, इतना समय लंबा क्यों हो रहा है, क्यों ना मैं अदृश्य हो पा रही हूँ, क्यों मैं भाग नहीं पा रही हूँ। और ऐसे बहुत देर तक ऐसे वन टू वन आँख मिचौली, मतलब आँख लड़ाने जो बहुत कैप कुछ भी कह सकते हैं, आप नजरें लड़ा रहे हैं, अचानक वो माली हंस देता है, स्माइल्स, उसके लाल लाल जो आँखें थी एकदम कोमल हो जाती, उसका फेटा जो है वो छूटने लगता है, और जब फेटा छूटता है तो उसका मोर पंख प्रकट हो जाता है, उसके मूछें भी गिर जाती है। अभी आप बताइए, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि वो बहुत देर तक क्यों घूर रहा था उनको, तुरंत आके स्माइल क्यों नहीं दिया, बताइए। हाँ, गुड, वेरी गुड। वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होता है उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता है ना, जितनी ज़्यादा उत्सुकता होता है ना एंग्जाइटी। लेकिन कृष्ण भगवान ना, वो जो कम कम मात्रा में आगे जाने वाली आवाज़ें थी उसको बंद होने के इंतजार कर रहे थे, समझे आपको, वो जो धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी, भागो भागो ललिता ग्रामीण राधा रानी भागो भागो, वो जो आवाज़ अभी तक आ रहे हैं ना, तो उनको ये बस वांटेड टू मेक श्योर कि वो आवाज़ें बंद हो जाए, मतलब वो सब अपने आवाज़ की सीमा के बाहर चले जाएं, ताकि हमारा एकांत जो है वो परफेक्ट एकांत हो जाए, इसलिए वो वेट कर रहे थे। जब आवाज़ें बंद हो गई तो स्माइल दे दिया उन्होंने, तब उनका फेटा फिसला, तब उनका मोर पर्व प्रकट हो गया, तब उनकी मूछें गिर गई। फिर वो अभी जब वो स्माइल दिया उन्होंने तो क्या हो गया रहेगा, ओह आप हो, मैं तो डर गई थी। है ना, मराठी में आपको किस में, कोई मराठी है, मराठी में एक वाक् प्रचार है, उसको कहते हैं जीव भांड्यात पड़ला, म्हणजे मेरी जान जो है ना वो बर्तन में गिर गई, मतलब बच गया मैं, कहीं और गिरने वाली थी तो बर्तन में गिर गए, मतलब क्या सुरक्षित हो गए। तो जब ने कृष्ण ने स्माइल दे दिया उनको और माली का रूप एक तरह से उनका पोल खुल गया, माल ने माली नहीं है कृष्ण है, तो ऐसे एकदम रिलीफ हो गई वो, वाह मैं तो डर गई थी पता नहीं क्या होने वाला था, तो तुम ही हो। फिर पूछते हैं कि आज ऐसे क्यों किया आपने, सब गोपियां तो चली गई। तो कहते आज मुझे अकेले में मिलने का आपका विचार था मेरे मन में, इसलिए मैंने ये रूप धारण करके आया, ताकि जैसे माली बन के आएगा तो सब गोपियां भाग जाएंगी, फिर आप ही बचोगी, इसलिए मैंने लीला किया। तो फिर वो पूछने लगे कि क्या करते हो यहाँ पर आकर, अब ये लीला बहुत लंबी है, पता नहीं समय कितना है अपने पास। वो लीला ऐसी है कि अभी इसकी कैसा है ना, कुसुम वन जो है ना, इसमें फूल बिनने की लीला है, लेकिन इसमें इतनी विविधताएं हैं, इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि हर रोज नई लीला है, काम वही है लेकिन नई लीला है उसके अंदर। तो पहले मैं ये कथा समाप्त करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसमें अंदर वराइटीज क्या क्या है। हा? तो कृष्ण पूछते क्या करते हो आप रोज, तो कहते हैं ये फूल आपके लिए बिनते हैं, फिर इसकी मालाएं बनती हैं, फिर हम लोग माला बनाने के लिए बिनते हैं, फिर जब उनको बिनते हैं तो हम यमुना जी में जाकर उसको धोते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना उनके कुछ फूल इसमें हैं, बहुत सारे नीचे गिर गए हैं, तो देखते हैं अरे तो फूल सब तो मिट्टी में गिर गए हैं, तो क्या करते हो आप, तो हम लोग उसको यमुना जी में धोते हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर उसकी मालाएं बनाते हैं, फिर आपको अर्पण करते हैं। तो चलो फिर चलो यमुना जाएंगे, यमुना जी जाके धोएंगे उसको। बोले कैसे जा सकते हैं आपके साथ अकेले, भले लोगों के सामने भर रोड पे कैसे जा सकते हैं, संकोच होगा, वो जटिला कुटला को पता चलेगा, फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत, मैं नहीं आ सकती इतनी दूर तक। तो कोई बात नहीं, हम जमुना जी को ही बुला लेते हैं। तो जमुना जी को आह्वान करते हैं, पैर से गड्ढा बनाते हैं और जमुना जी को आह्वान करते हैं, और जमुना जी वहाँ पर वो गड्ढे को पूरा भर देती है, और क्या बनता है, कुसुम सरोवर, बहुत विशाल और सुंदर सरोवर तैयार होता है। उसके किनारे में बैठकर राधा और कृष्ण जो गिरे हुए फूले सब बिनते हैं और ले जाते हैं, उसको सब धो देते हैं अच्छी तरह से। अभी वो फूल एकदम रेडी हैं, उसके क्या बनाना है उसके लिए। तो श्री कृष्ण भगवान बड़ी नम्रता से राधा रानी को कहते हैं कि क्या मैं आपके बालों का श्रृंगार कर सकता हूँ इन फूलों के साथ आज के लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण को राधा रानी कहती है कि आपको आता है, एक प्रश्न कर रही है क्या, वो तो गोपियाँ उनके लंबे बाल होते हैं, तो गोपियाँ एक दूसरे का श्रृंगार अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो राधा रानी फिर अभी सामने सामने खड़े तो अभी कैसे होते हैं, उल्टे हो जाते हैं ना, राधा रानी उनके सामने आ जाती है, बैठ जाती है। श्री कृष्ण भगवान जो है बहुत सुंदर, उनके केश जो है वो अपने हाथ पे लेकर उसका श्रृंगार करते हैं, बहुत कंघी से पहले कंघी करते हैं उसको, फिर बहुत ही सुंदर तरह से उनके बालों को सजाते हैं। वो है कुसुम सरोवर की लीला, उसको कहते हैं वेणी गूथन लीला। इसमें अनंत प्रकार के वैरायटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीला तो सब सब जगह पर, हर जगह हर दिन वहाँ पर होती रहती है, भगवान वहाँ पर हर दिन राधा रानी के बालों का श्रृंगार करते हैं अलग अलग विविध प्रकार से। तो दूसरी लीला में क्या होता है कि जैसे ही माली आते हैं तो कोई भागता नहीं है, उधर ही खड़े हो जाते हैं और फूल बिनते रहते हैं। फिर माली आता है तो भी लोग उसको ध्यान देते नहीं है, फिर वो डांटने लगता है जोर जोर से, बड़ी बड़ी आवाज आते लगता है, कौन हो तुम लोग यहाँ पर, कैसे आते हो यहाँ पर, तुम्हारा तुम्हारा पिताजी का वन है ये, तो तुम कौन लगते हो, तुम कौन आए हो, क्या प्रूफ है तुम्हारा कि तुम यहाँ के मालिक हो, तुम यहाँ के मालिक हो। तो फिर वो कहता है मालिक कि तुमने इसमें से कौन से पौधे लगाए हैं, किसको जल दिया है तुमने, किसका सिंचन किया है तुमने, कुछ भी नहीं किया है तुमने, ना पेड़ लगाया है, ना पौधा लगाया है, ना जल दिया है, ना कुछ देखभाल की है उसका, और तैयार फूल उसको चोरी, चोर हो तुम लोग सब लोग। तो ऐसे बहुत सारी बहस बहस होती है। फिर उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं लड़कियां सब, वो एक माली है बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे कि एक बिल्ली है और बहुत सारे चूहे हैं, तो तो क्या करते हैं वो, सब मिलकर बिल्ली पर अटैक कर देते हैं, और बिल्ली यहाँ वहाँ देखते कि अकेली हूँ मैं, कोई है ही नहीं साथ में मेरे, तो बिल्ली भाग जाती है, चूहा लोग जीत जाते हैं। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में जो बिल्ली है ना, बिल्ली उससे भी बड़े साइज के चूहे होते हैं, तो जब चूहा आता है ना तो बिल्ली भाग जाती है। दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। हाँ, इतने बड़े चूहे हैं, घूस ऐसे बड़े बड़े। तो वो जब अटैक करता है ना, तो वो मैंने देखा हुआ है मेरे आंखों से, पहले मंजिल से कूद कर वो ग्राउंड फ्लोर पे जाता है एक ही छलांग में, इतना बड़ा, इतना पावर चूहे में थी। तो ऐसा चूहा सामने आएगा तो वो बिल्ली का घर क्या करेगी। तो वैसे सारी गोपियां मिलकर वो उसको अटैक कर दिए, उसमें उसको शरीर से जूझना शुरू कर देती है। तो जब झूझते लगते हैं तो उसका पेटा निकलने लगता है, तो कुछ गोपियां देखते हैं कि इधर तो मुरली भी लगी हुई है, तो मुरली निकाल लेते हैं उसकी, उसका पेटा चीन के उतार देते हैं और उसको प्रकट कर देते हैं कि तुम कौन हो। फिर वो फिर नोक झोंक होती है, भैंस होती है उनके साथ में, ये भी होता है। और एक लीला ऐसी है कि राधा रानी अभी अकेली पड़ी हुई ना, तो ललिता विशाखा उसको छोड़ के नहीं जाती है। कैसे छोड़ के जाएंगे हम लोग, जाएंगे तो साथ में लेके जाएंगे, जो अगर नहीं जाएंगे तो जो भी होगा हमारा साथ में होगा, वो दिन का भाव है उनका। तो ललिता विशाखा और दो चार सखियां साथ में रहती हैं उनकी, और उनको छुड़ाने की कोशिश करती है, उतने में वो आ जाता है। फिर अभी क्या कैसे ना, अभी उसको चोर है समझो अभी, और पुलिस आ गया उसके सामने, तो वो एकदम से तुरा अपना मोड ही बदल लेता है, हमने क्या किया है, किधर चोरी किया है, किधर कुछ नहीं किया, क्यों आप लड़ रहे हो बेकार में, हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, चोरी क्यों कर रहे हैं, ऐसे एकदम बोलते ना चोर उल्टा डांटे क्या बोलते हैं उसको, कोतवाल को, ऐसे ऐसा भाव बदल लेते कि क्या क्यों डिफेंसिव होना है अपने को, तो एकदम रुबा में खड़े रहना, किधर चोरी किया है, दिखाओ क्या हुआ है, और उल्टा ही डांटना है उसको, आप कौन होते हो, आप इसके मालिक हो क्या, आपको क्या अधिकार है हमको डांटने का, ऐसा सब चालू कर देते हैं वो। तो उतने में उसका पेटा गिर जाता है और वो प्रकट हो जाता है, तो वो फिर वो सब भांडा खुल जाता है। तो फिर कृष्ण भगवान पूछते हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, तो कहते हैं कि हमारे घर में सांझी हो रही ना, तो वो पास वाले वनों में तो फूल नहीं थे कुछ, इसलिए हम दूर के वनों में आ गए। तो फिर वो वापस वही, चलो धोते हैं उसको, फिर हम कैसे जाएंगे आपके साथ में, फिर जमुना जी को प्रकट करते हैं, फिर कुसुम सरोवर बनता है, फिर वहाँ पर राधा रानी को विनती करते हैं कृष्ण भगवान, वो सब सखियाँ साइड में खड़ी हो जाती हैं। ये लीला देख रहे हैं ना कि इतना आनंद की बात है, कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, तो वो भी खड़े होकर देख रहे हैं, और श्रृंगार पूर्ण होने के बाद उनको ध्यान में आता है बहुत देर हो चुकी है अभी। तो ललिता विशाखा कहते हैं अरे तुम कितना समय लगा रहे हो, अभी हमारा तो सांझी पूजन का समय हो गया है। तो वो ललिता विशाखा को कृष्ण कहते कोई बात नहीं, आप चले जाओ, और आपकी सांझी जो है ना वो मैं बनाऊंगा आके, डोंट वरी, मतलब वो जो डेकोरेशन है वो मैं सखी बनकर आऊंगा, तुम्हारे घरों घरों में जाऊंगा और तुम्हारी सांझियां तुम्हारे रूप में मैं बनाऊंगा। तो वो श्रृंगार भी राधा रानी का पूरा करते हैं और भेष बदल कर ये तीन चार सखियों के घर में जाते हैं और अपने हाथों से सांझी बनाते हैं, और कहते हैं कि किसी को बताने की जरूरत नहीं कि उस दिन सांझी सर्वोत्कृष्ट किसके घर में थी, जहाँ जहाँ कृष्ण गए बनाया उनकी सांझी जो है सर्वोत्कृष्ट थी, सबसे श्रेष्ठ, नंबर वन विनर उसकी थी। तो कल मैंने जब देखा तो मैं बहुत भाव विभोर हो गया था उस सांझी को देखकर। उसके अंदर ना लीलाएं बनाते रंगोली से, कृष्ण भगवान राधा रानी को झुला रहे हैं झूला में, कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ में बैठे हुए हैं, एक ही सांझी में तीन चार लीलाएं ऐसे वन वन बनाए हुआ, पूरा पूरा वन ही क्या वन, जैसा लगता कि पेंटिंग किया किसी ने ऐसा पूरा, इतना सुंदर इतना सुंदर उसमें। तो फिर हम जब देख रहे थे उसको विस्तार रूप में, तो उसमें ठाकुर जी भी इतने सुंदर बनाए थे रंगोली से, रंग से बनाए थे, राधा रानी भी बनाई थी उसमें, उसके कपड़े के ऊपर भी श्रृंगार बहुत सुंदर सुंदर बनाया था, रंगोली से ही बनाया था। फिर वो गोसाई जी बोले, तो बता रहे थे कि कैसे राधा रानी को बताया गया था कि आप इसका पूजन करोगे तो आपके इष्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो उस पर एक दोहा भी लिखा था बैनर के ऊपर, कैसे कैसे श्री जी सांझी बनाती है और ठाकुर जी की मनोकामना करती है प्राप्त हो जाए इसलिए। तो गोसाई जी कह रहे थे कि ये तो अच्छी है लेकिन भट्ट जी के मंदिर में बहुत और सुंदर बनाते हैं। तो हमने कहा किधर है भट्ट जी का मंदिर, बोले तो यही वो अठकम्बा से बाहर जाओ मंदिर में, हमारे सामने चलते रहो, सामने पूछो भट्टे जी का मंदिर कहाँ है, वहाँ भट्टे जी का मंदिर मिल जाएगा आपको। तो गए उधर देखने के लिए, तो इतना सा गली में, इतना सा एंट्रेंस है उसका अंदर, इतना बड़ा विशाल मंदिर है, इतना बड़ा विशाल मंदिर, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का मंदिर है वो। गदाधर भट्ट को थे ना, गदाधर भट्ट एक थे, गदाधर दास एक, गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट के द्वारा सेवित राधा मदन मोहन जी का मंदिर है वो, गौड़िया मंदिर है बकायदा। और इतने से ठाकुर जी, इतने से, और वो भी श्रीनाथ जी के रूप में श्रृंगार किया उनका, और हर चीज ना लाइट दे रहा है पूरा। यहाँ पर एक मणि है वो भी लाइट फेंक रहा है, नाक में मणि है वो भी लाइट फेंक रहा है, कान में मणि है वो लाइट फेंक रहा है। अब जहाँ जहाँ थोड़े से हिलोगे ना, सब जगह लाइट ऐसे आपकी आंखों में जा रही है, इधर से उधर सारे श्रृंगार में। इधर देखोगे तो यहाँ से एक माला में जितनी मणि है वो सबकी लाइट आपके ऊपर आ रही है। इतना अद्भुत दर्शन था उसके अंदर, और एग्जैक्ट ठाकुर जी के सामने एक और अद्भुत प्रकार की, अलग प्रकार की झांझी बनाई गई थी, बहुत ही सुंदर। आज कौन सी तिथि है? आज 13 है ना, तो आज है, कल है, हर परसों है, 3 दिन तक रंगों की सांझी बनाई जाएगी। गोबर का प्लेटफॉर्म, पहले गोबर लिपाया जाएगा, फिर उसके ऊपर, नहीं ये वृंदावन की बात कर रहा हूँ। हाँ, और वृंदावन में हमने देखा, लेकिन सारे ब्रज में सांझी पूजन होता है, सब मंदिरों में, सब घरों में, सब लड़कियाँ अपने घर में, मंदिरों में, सब जगह पर सांझी का उत्सव चल रहा है। और कुछ लोग गोबर से दीवार पर भी सांझी बनाते हैं, गोबर से चिपका कर उसको डिज़ाइन बनाते हैं, उसको भी अलग अलग प्रकार के विविध डिज़ाइन बनाते हैं उसके, और फिर पूजन करते हैं उसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं, सदाई स्पुर का मोरा माने, क्या उसका लास्ट लाइन क्या है, नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुख मोय, सदाही स्पुर का मोरा माने। कह रहे कि ये जो नित्य सुख सुख सुखमय लीला है, राधा रानी और कृष्ण भगवान को आह्लाद देने वाली सुंदर सुंदर लीला है, ये मेरे मन में सदा स्फूर्ति रहे। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय, सदाई स्फुर मोरा माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धामा, जतन मंदिर मनो हर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। आभृत कालिंदी धीरे राज हंस केली कोरे, ताहे शोभे कनक कमाल। आभृत कालिंदी धीरे राज हंस केली कोरे, ताहे शोभे कनक कमाल। तार मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य रत्न सने बसिया दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका बसिया दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि आमिया पोडीचे खाशी हास्य परी हास्य संभाषणे ओ रूप लावण्य राशि आमिया पोडीचे खाशी हास्य परी हास्य संभाषणे नरोतम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्पुरुख मोर मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत नाक आभृत कालिंदी निरे राज हंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्न सने बोशिया छेन दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका बोशिया छेन दुई जाने रूप लावण्य राशि आमिया पोडीचे खाशी अस्य परी अस संभाषणे आमिया पोडीचे खाशी अस्य परी अस संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोर मने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरुक मोर मने सदाई स्फुरुक मोर मने सदाई स्फुरुक मोर मने सदाई स्फुरुक मोर मने वृंदावन धाम की।